हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गाड़ी में बैठने के बाद रूही के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली थी। कम से कम वो उन लोगों के बीच तो रहेगी जिन्हें वो जानती है, वरना पार्थ के उस बंगले में वो कैद होकर रह चुकी थी। रोज रोज अपने हाथ का बना गंदा सा खाना खाना और उसके बाद उल्टियां करना, भारत की डांट सुनना, एक कमरे में अकेले रहना, इन सब से रूही बुरी तरह घुटने लगी थी। और शायद निमानी हाउस जाकर उसका कॉलेज जाना भी फिर से शुरू हो जाए और वो सब की कैद से राहत हो जाए। उसके दिल में बहुत सारी उम्मीदें जाग गई थीं। गाड़ी में बैठने के बाद भी वेदांत ने जब देखा कि रूही के चेहरे की बेचैनी खत्म नहीं हुई है और पार्थ का चेहरा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अगर तुम लोगों को अभी यही डर लग रहा है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप को घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद तुम लोगों को कोई मना नहीं करेगा। इनफैक्ट किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तुम दोनों को साथ रखने के अलावा। पार्थ और रूही दोनों ने आंखें उठाकर वेदांत की तरफ देखा, तो वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग उन्हें ये बोल देंगे कि तुम दोनों ने पहले से ही शादी कर ली है और उसके बाद उन्हें तुम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पार्थ ने कहा, ठीक है भैया, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वेदांत हल्का सा मुस्कुराया और फिर थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी निमानी हाउस के सामने जाकर रुक गई। अब शाम के करीब 5 बज रहे थे। वेहा हमेशा की तरह गार्डन में गूगल और सनशाइन के साथ खेल रही थी। वो घास पर नंगे पैर बैठी थी और वो दोनों बच्चे उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उसने जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी, उसने गर्दन घुमाकर पार्किंग की तरफ देखा। वेदांत के साथ दो नए लोगों को देखकर वेहा कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि वो रूही को पहले से नहीं जानती थी और ना ही पार्थ को जानती थी। तो वहीं वेदांत रूही और पार्थ को देखते हुए बोला, चलो मैं तुम लोगों को अपनी टोमेटो से मिलवाता हूँ। रूही ने कन्फ्यूज होते हुए कहा, टोमेटो? उसकी इस बात पर वेदांत ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी धर्मपत्नी को निकनेम दिया था क्योंकि वो टोमेटो की तरह लाल होती रहती है, कभी गुस्से में तो कभी शर्म से। आ जाओ, वो बाहर बैठी है, उसे बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद है, पूरे दिन उनके साथ खेलती रहती है। वेहा का जिक्र होते ही वेदांत का चेहरा खिल उठा था। वो काफ़ी प्राउडली अपनी बीवी के बारे में उन दोनों को बता रहा था। पार्थ को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि पूरे दिन कोई बिल्ली के बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसके मन में भी एक एक्साइटमेंट आ गया विहा को देखने का। थोड़ी देर बाद ही वो तीनों गार्डन में पहुंच चुके थे। विहा भी उन्हीं की तरफ देख रही थी। वहां जाते ही वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, गुड इवनिंग टोमेटो, देखो आज हमारे घर में दो नए लोग आए हैं। ये मेरा छोटा भाई है रितेश चाचू का बेटा, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है रूही, रूहान जिन्हें डॉक्टर आंटी से इलाज करवाता है उनकी बेटी है। विहा ने ध्यान से रूही को देखा और फिर पार्थ को देखा और फिर से गूगल की तरफ देखकर उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। रूही ने कन्फ्यूज होते हुए कहा, हेलो मिस्टर टोमेटो, आपको हमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? आप इतनी सैड क्यों नजर आ रही हो? वेदांत की स्माइल भी जा चुकी थी। उसने फिर गहरी सांस लेकर रूही की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश है। अभी अंदर चलते हैं, बाकी लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वेदांत को पता था अगर विहा ने एक बार उनसे नजरें फेर ली हैं, इसका मतलब है कि वो लोगों से बात नहीं करना चाहती। पार्थ अब भी कन्फ्यूजन से विहा को देख रहा था। उसे विहा की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। आखिर वो यहाँ ऐसे नंगे पैर क्यों बैठी थी और किसी से बात क्यों नहीं कर रही है? उसे देखकर पार्थ को अपनी वाइफ मैच होती महसूस हो रही थी। वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब उसका मन करता है तभी बात करता है, वरना साइको की तरह बस एक नज़र देखकर इग्नोर मार देता है। थोड़ी देर बाद वेदांत ने तुम दोनों को घर के अंदर ले गया। राधिका और माधवी सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। उन दोनों ने जैसे ही देखा कि पार्थ अंदर आ रहा है, दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। माधवी को पहले से पता था कि पार्थ इंडिया में है और वो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था, लेकिन राधिका को सब लोगों ने झूठ बोल रखा था कि उसका बेटा विदेश ही रहता है। उसे देखकर राधिका झट से सोफे से उठ गई और फिर लगभग दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसके गले लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। इतना बोलकर राधिका ने पार्थ के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके माथे को चूम लिया। पार्थ ने भी राधिका को गले लगाते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भी अपनी मम्मी को बहुत मिस किया था, पर अफसोस वो ये सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो वहीं उसके गले लगते ही राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। रूही ने अपने मन ही मन कहा, कितने बुरे हैं मिस्टर अंकल, उनकी मम्मी यहाँ उनके लिए रो रही है और ये वहाँ से जीलों को करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार अपनी मम्मी से भी मिल लिया जाए। थोड़ी देर बाद पार्थ ने आहिस्ता से राधिका को खुद से अलग किया, जिसके बाद राधिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इंडिया कब आए? तुम्हारे पापा ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, और ना ही तुमने बताया। मैं तुम्हारी सौतेली माँ थोड़ी हूँ जिसे तुम कुछ भी नहीं बताते हो, पार्थ ने धीरे से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मैं बस आपको सरप्राइज देना चाहता था, राधिका ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। मैं इस सरप्राइज से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, वेदांत ने हंसते हुए कहा। चाची, मैं इससे भी बड़ा सरप्राइज दे सकता हूँ, पार्थ आपके लिए बहू भी लेकर आया है। यह सुनते ही राधिका की आंखें बड़ी हो गईं और उसने गुस्से में कहा, क्या इसने किसी फिरंगी से शादी कर ली? मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मुझे अपने घर में अंग्रेज बहू नहीं चाहिए, मुझे तो इंडियन लड़की ही चाहिए। रूही पहले भी इस घर में आ चुकी थी, इसलिए राधिका को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पार्थ की शादी रूही से हो सकती है, इसलिए वो रूही को तो पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। तो वहीं माधवी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, उसे डर लग रहा था कहीं पार्थ और रूही ने सारा सच वेदांत को तो नहीं बता दिया है कि कैसे रूही को किडनैप करवाकर डॉक्टर रश्मि से रूहान और विहा को बेवकूफ बनाया गया और वेदांत का बच्चा भी उसी की वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाया। ये सोच सोच कर ही उसके माथे से पसीना बहने लगा था। वेदांत ने जल्दी से राधिका की कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, चाची पसंद है और ये है आपकी बहू, कोई फिरंगी नहीं है। राधिका ने चैन की सांस ली, लेकिन अचानक ही उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, लेकिन ये तो बहुत छोटी है, ये कैसे पार्थ की बीवी बन सकती है? सिद्धांत ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चाची आप कौन से जमाने में जी रही हो? टोमेटो ने आपको मॉडर्न बनाया है ना, तो थोड़ा मॉडर्न तरीके से सोचो। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, और इसी डर से पार्थ घर नहीं आ रहा था कि हम लोगों से छुपा कर बैठा था। ये तो मैंने इन दोनों को अस्पताल में पकड़ लिया, वरना ये तो कभी नहीं बताता कि यहां रह रहा है। वेदांत की ये बात सुनकर माधवी की नजरें पार्थ के चेहरे पर गईं, जो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। माधवी को जल्द से जल्द जानना था कि क्या क्या पता है वेदांत को। तो वहीं राधिका ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हाँ वैसे विहा ने मुझे काफी हद तक मॉडर्न बना दिया है, मैं रूही को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे ये बहुत क्यूट सी बच्ची लगती है। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, आप इसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रख सकती हो।
राधिका ने आगे बढ़कर रूही को अपने गले लगा लिया। रूही भी अब खुश हो चुकी थी, उसे हमेशा से प्यार दुलार की आदत थी, जो कई महीनों से किडनैप होने की वजह से उसे नहीं मिल पा रहा था और यहाँ आते ही मिलना शुरू हो गया था।